मास देखते ही आनिया का जी मचल गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से गाउन संभालते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। उसकी अचानक ऐसा करने से जुली, अनामिका जी और वहां मौजूद बाकी सभी वैम्पायर, जो इंसानी भेष में थे, हैरान हो गए। अन्वय उसी ओर आ रहा था। जब उसने आनिया को यूं भागते देखा तो उसके कदम ठिठक गए। अगले ही पल उसकी नजरें डाइनिंग टेबल पर पड़ी और उसकी भौहें से कुड़ गईं। वो आनिया के पीछे दौड़ा। आनिया बाथरूम में उल्टी करती रही। अन्वय बाहर खड़ा उसका इंतजार करने लगा। कुछ पल बाद आनिया बाहर आई। उसने एक तौलिया लिया और अपना मुंह पूंछते हुए बोली, थैंक यू। अब समझ आया कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। अन्वय की आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसके हाथ रुक गए। हैरान नजरें अन्वय की ओर घूम गईं, जो उसे ही देख रहा था। आनिया ने उसे सामने देखा और खुद को संभालते हुए बोली, क्यों नहीं है हमारा मेल? अगर तुम बहुत हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम हसीन नहीं हूं। मैंने इसकी बात तो नहीं की। तुम्हारी और मेरी दुनिया में जमीन और आसमान का अंतर है, और धरती कभी आकाश से नहीं मिलती। गलत, क्षितिज पर धरती का आकाश से मिलन होता है। भले ही हम दो अलग अलग योनि से हैं, पर रहते इसी धरती पर हैं, तो हमारा मिलन संभव है। तुम कभी मेरी दुनिया में एडजस्ट नहीं हो पाओगी। तो तुम मेरी दुनिया में चलना, हम पहले जैसे ही साथ में रह लेंगे। मैं अपने समुदाय को छोड़कर उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी यहीं तुम्हारे साथ। तुम एक दिन मर जाओगी, इंसान हो, तुम्हारी उम्र निश्चित है। उम्र तो तुम्हारी भी निश्चित है। हाँ, मुझसे बहुत ज्यादा होगी तुम्हारी उम्र। अगर ऐसा हुआ कि मैं मरने वाली हूँ तो तुम मेरा खून पी लेना। मैंने टीवी में देखा है, जब वैम्पायर किसी का खून पीता है तो वो इंसान वैम्पायर बन जाता है। उसके बाद मैं भी तुम्हारी जैसी बन जाऊंगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम अभी ही मेरा खून पी लो, फिर तो मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगी, तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। उसके बाद तो तुम्हें मुझे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहते हुए आनिया ने अपनी गर्दन उसकी ओर बढ़ा दी। उसकी लाल सुराहीदार गर्दन पर होती हलचल देखकर अन्वय खुद पर नियंत्रण खोने लगा। उसने झट से उस पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, हर चीज को मजाक में लेती हो। किसी दिन अपनी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मारी जाओगी। मुझे वो भी मंजूर है, शर्त बस इतनी सी है कि वो मौत तुम्हारी बाहों में आए। मेरी आखिरी सांसें मैं तुम्हारे सीने से लग कर लूं। अन्वय का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और वहां से चला गया। आनिया असमंजस में उसे देखती रही, फिर बेड पर बैठ गई। बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अन्वय बाहर पहुंचा तो हॉल में अनामिका जी खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में झलकते सवाल को देखकर अन्वय ने उनके पास आते हुए जवाब दिया, वो नॉनवेज नहीं खाती, इनफैक्ट अगर देख भी ले तो उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। उसकी बात सुनकर अनामिका जी ने चिंतित होते हुए सवाल किया, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? ठीक है, मैं उसके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया और अनामिका जी मुस्कुरा दी। आनिया अपने कमरे में बोर हो रही थी। वो बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। कितना बड़ा गार्डन था और उतना ही सुंदर भी लग रहा था। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वो खुद ही खुद में मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आवाज सुनकर वो घबरा गई और झट से पीछे देखा। अन्वय हाथ में ट्रे लिए अंदर आ रहा था। अन्वय ने एक नज़र उसे देखा और टेबल की ओर बढ़ते हुए बोला, एक जरा सी आहट पर इतना घबरा गई, फिर भी खुद को स्ट्रांग कहती हो, मेरे साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश रखती हो, जबकि मेरा वजूद ही तुम्हें दहलाने के लिए काफी है। ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लगता। हाँ, सब तुम्हारे जैसे अच्छे वैम्पायर हों ये जरूरी तो नहीं। मैंने टीवी में देखा है, वैम्पायर इंसान को देखते ही पागल हो जाते हैं और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए थोड़ा डर लग जाता है कभी कभी कि कहीं कोई आकर मेरा खून पीकर मुझे मार गया तो मेरा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना तो सपना ही रह जाएगा ना। आनिया ने तुरंत ही सफाई पेश की। उसकी बात सुनकर अन्वय एक नज़र उसे देखा, फिर नजरें फेरते हुए बोला, इतना टीवी मत देखा करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है टीवी देखते देखते। उसकी बात पूरी होते ही आनिया बोल पड़ी, क्यों? मुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है। मैं तो कहने वाली थी कि यहाँ भी मेरे लिए एक टीवी लगवा दो, मैं ऐसे बोर हो जाऊंगी। तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई हो, कुछ दिनों की बात है, ऐसे ही एडजस्ट कर लो। अगर ज्यादा बोर हो तो नीचे चली जाना, पर जुली के साथ ही रहना, या अगर फिर भी मन ना लगे तो मुझे बता देना, बुक्स दे दूंगी तुम्हें, पढ़ती रहना। पर मुझे बुक्स नहीं पसंद। अच्छा, एक काम करना, मुझे रोमांटिक नॉवल ला कर देना, फिर मेरा टाइम पास हो जाएगा। और बहुत सारी लाना, क्योंकि अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाली। अगर तुमने मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोचा भी तो मैं किसी वैम्पायर के पास चली जाऊंगी और कहूंगी कि मेरा सारा खून पीकर मुझे मार दे। जो जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। उसकी बात सुनकर अन्वय को गुस्सा आ गया और उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, मौत तुम्हारे लिए खेल है। जब देखो एकदम निडर होकर कह देती हो कि कोई तुम्हारा खून पी जाएगा और तुम मर जाओगी। आनिया ने उसकी बात सुनकर बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें तो मुझसे प्यार नहीं है ना? मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे बिना वैसे भी ये जिंदगी मेरे लिए बेमतलब की है। मैं वैसे भी खुद को खत्म कर दूंगी। इससे अच्छा तो यही होगा किसी काम आकर मरूं। उसके इतना कहते ही चटाक की आवाज गूंजी। इसके साथ ही अन्वय की गुस्से भरी आवाज गूंजी, खबरदार जो दोबारा ऐसी बातें अपनी जुबान पर लाई तो। किसी का शिकार बनकर मर जाओ इसलिए नहीं लाया हूँ तुम्हें यहाँ। मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हारी जान पर मेरा अधिकार है। अगर दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। आनिया की आंखों में आंसू भर गई। उसने अपने गाल पर अपनी हथेली रख दी और वहीं बैठकर रोने लगी। अन्वय ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था उसे, जिसके कारण आनिया के सर में भी दर्द शुरू हो गया था। ये बात उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रही थी कि अन्वय ने उस पर हाथ उठाया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।